नमस्कार भारत, तारीख 23 जून दिन रविवार, मैं हूँ मानसी दास। 5 जुलाई को पेश होगा आम बजट, सरकार के सामने क्या है चुनौतियाँ?
मोदी जी के दिमाग में शायद ये है कि जिस प्रकार अमेरिका और चीन में बड़े बड़े कारखाने हैं, उसी प्रकार भारत में भी बड़े बड़े कारखाने लगे, लेकिन वो भारत की परिस्थिति के लिए कितना उपयुक्त है इस पर वो विचार नहीं कर रहे हैं।
गंभीर जल संकट से जूझते चेन्नई में कीमती है पानी की एक एक बूंद। विश्व कप क्रिकेट में भारत ने मैच जीता लेकिन दिल जीता अफगानिस्तान ने।
भारत जैसी टीम को उन्होंने ऑलमोस्ट हरा दिया। आज क्रिकेट देखने के बाद मैं तो फैन हो गया हूँ अफगानिस्तान क्रिकेट का।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अगले महीने पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। मोदी की ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके नेतृत्व में गठित नई सरकार का पहला बजट 5 जुलाई को पेश किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। इस बैठक में 40 से अधिक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक करने का लक्ष्य रखा था। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमरीका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमरीका ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। इससे पहले अमरीका ईरान पर एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करने वाला था, लेकिन हमले से ठीक 10 मिनट पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने हमले को रोक दिया। ईरान ने अमरीका के एक जासूसी एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, जिसकी प्रतिक्रिया में ये हमला किया जाना था। ट्रंप ने तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही और कहा,
We're moving forward with additional sanctions on Iraq, and some of them are in place. As you know, we have about as strong a sanction
group. हम ईरान पर कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। कुछ मामलों में ये प्रतिबंध धीरे धीरे लगाए जाएंगे, लेकिन कुछ मामलों में ये तत्काल प्रभाव से लगाए जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ट्रंप प्रशासन ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से $50 अरब की अपनी एक योजना जारी की है। पीस टू प्रॉस्पेरिटी यानी शांति से संपन्नता नाम की इस योजना के अनुसार अमेरिका फलस्तीनी इलाकों को जोड़ते हुए एक नया कॉरिडोर बनाएगा, जिसके जरिए इस प्रांत में व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि फलस्तीन की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए और उसे पड़ोसी अरब मुल्कों से रेल और सड़क माध्यम से जोड़ने के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड की आवश्यकता है। वहीं फलस्तीन ने ट्रंप प्रशासन की इस योजना को खारिज कर दिया है और कहा है कि फलस्तीन के इलाकों पर इजरायली कब्जे को नज़रअंदाज करने की योजना बनाई गई है। PLO का कहना है कि ये योजना फलस्तीन के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है और इस कारण ये सफल नहीं होगी। फलस्तीन ने बहरीन में हो रहे सम्मेलन का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। शनिवार को विश्व कप क्रिकेट में साउथहैम्पटन में भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ। भारत ने ये मैच 11 रनों से जीत लिया। मोहम्मद शमी ने अंतिम ओवर में एक के बाद एक करके 3 विकेट चटकाए और इसी के साथ अपनी हैट्रिक पूरी की। विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले वो 9वें गेंदबाज बन गए हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार किम ने कहा है कि ये वाकई बहुत दिलचस्प है और वो अमरीकी राष्ट्रपति के असाधारण साहस को सलाम करते हैं। हालांकि ये चिट्ठी उन्हें कब मिली और कैसे मिली ये अभी तक पता नहीं चला है। इससे पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति ने उत्तर कोरियाई नेता द्वारा उन्हें खत भेजे जाने की बात कही थी। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराक में सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि बगदाद की एक मस्जिद में हुए बम धमाके में कम से कम 7 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने कहा कि इस बम धमाके में 7 लोग मारे गए हैं। इस जानकारी में संशोधन करते हुए उन्होंने कहा कि हमलावरों ने घायलों को लेकर गलत जानकारी फैलाई थी, जिसे सुरक्षा तंत्र ने यकीन कर लिया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि इस बम धमाके के पीछे कौन था और कितने लोग मारे गए हैं। ईरान से मिल रही खबरों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एक पूर्व कर्मचारी को मौत की सजा दी गई है। सैनिक कोर्ट ने जलाल हजीजवार पर अमरीकी खुफिया संस्था CIA के लिए काम करने का आरोप लगाया है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। कल विश्व कप क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसे भारत ने 11 रनों से जीत लिया। आखिरी ओवर तक रोमांच बना रहा कि कहीं अफगान खिलाड़ी आखिर के 6 गेंदों में 16 रन बनाकर अब तक इस टूर्नामेंट में सभी मैच जीते भारत को हरा तो नहीं देंगे। लेकिन मोहम्मद शमी की हैट्रिक ने कमाल दिखाया और भारत को जीत दिलाई। लेकिन मैच के स्टार रहे अफगानिस्तान के खिलाड़ी, जिन्हें हारने के बाद भी काफी प्रशंसा मिली। सुनवाएंगे मैच पर विस्तृत रिपोर्ट, लेकिन पहले बात आम बजट की जो 5 जुलाई को पेश होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शीर्ष अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक मंदी की आशंकाओं के बीच आर्थिक हालात को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसी पर विचार विमर्श हुआ। भारत को 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के दावों से उलट उत्पादन, कमोडिटी बाजार और राजस्व समेत कई मोर्चों पर खबर बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में दूसरे कार्यकाल में आर्थिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी और नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने कई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों के लिए क्या वो तैयार हैं, या फिर वो पुरानी नीतियों को ही और जोर शोर से लागू करेंगे? इसी मुद्दे पर वरिष्ठ अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला से बात की हमारे सहयोगी संदीप राय ने।
बीजेपी को अब समझ में आ रहा है कि जो चुनाव उन्होंने जीता है वो आर्थिक मोर्चे पर नहीं जीता है, वो दूसरे मुद्दों पर जीता है। और आर्थिक परिस्थिति लगातार बिगड़ रही है, जैसा हमारे पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री ने भी ग्रोथ रेट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। और मोदी जी द्वारा इस बैठक को लिया जाना बिल्कुल इस बात को संकेत करता है कि अब वो सीरियस हैं कि भाई अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ करना होगा।
हालांकि सरकारी आंकड़ों में जो लगातार आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन की बातें अब तो बाहर आ चुकी हैं,
सरकार की हालत उस डॉक्टर जैसी है जो कि पेशेंट को, जिसने एंटीबायोटिक्स दिए हैं और पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अब उसके सामने चॉइस ये है कि एंटीबायोटिक्स का की स्ट्रेंथ बढ़ाए या फिर दवा बदले। तो अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने के लिए मोदी सरकार ने रिजर्व बैंक पे दबाव डाला कि ब्याज दर कम की जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि जिन लोगों के साथ मोदी जी ने बैठक की है, मैं मानता हूं कि मोटा मोटी ये वही लोग होंगे जिनके सुझाव पर अब तक की पॉलिसीज थी। तो अनलेस कि मोदी जी अलग तरह के लोगों से बातचीत करें, उसी डॉक्टर से बार बार बात करने से कोई हल निकलेगा, ऐसा मुझे आशा नहीं है।
अगर आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को कुछ नया करना है, कुछ ऐसा इकोनॉमी में कुछ इंजेक्ट करना है, तो सरकार को क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या करना चाहिए?
जी, सबसे पहले तो सरकार को जो ये फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार का मंत्र इन्होंने लागू कर रखा है, चीन से जो भी माल आ रहा है उसको स्वच्छंद आने दो, इससे विड्रॉ करना चाहिए। और राष्ट्रपति ट्रंप से सबक लेते हुए इनको अपने आयात कर बढ़ाने चाहिए, जिससे कि देश के छोटे और बड़े उद्यमों की प्रतिस्पर्धा करने की शक्ति बढ़े, वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें और देश में रोजगार और जीडीपी दोनों बढ़े। दूसरी बात, जो बड़े उद्योगों के प्रति मोह है सरकार का, मोदी जी के दिमाग में शायद ये है कि जिस प्रकार अमेरिका और चीन में बड़े बड़े कारखाने हैं, उसी प्रकार भारत में भी बड़े बड़े कारखाने लगे, लेकिन वो भारत की परिस्थिति के लिए कितना उपयुक्त है इस पर वो विचार नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रोजगार बनता है वो बड़े कारखानों में नहीं बनता बल्कि छोटे कारखानों में बनता है। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि छोटे उद्योगों को संरक्षण देना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो ये वित्तीय घाटे को नियंत्रण करने का मंत्र बना रखा है, जिसके कारण सरकार का पूंजी निवेश कम होता जा रहा है, उसको रिवर्स करके सरकार को अपने चालू घाटे या राजस्व घाटे को कम करना चाहिए और निवेश को बढ़ाना चाहिए। अगर ये 3 नीति करेंगी तो मेरा पक्का मानना है कि अर्थव्यवस्था 6 महीने में ही पलट जाएगी।
मोदी सरकार के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती कितनी बड़ी, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला। बिहार में लू और गर्मी से मरने वालों की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को यहां 10 लोगों की लू से मौत की पुष्टि हुई। अब तक लू लगने से मरने वालों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड्स में भी सैकड़े को पार कर चुकी है। लू से उपजे हालात की पड़ताल करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज प्रियदर्शी गया पहुंचे। उन्होंने एक ऐसे शख्स से बात की जो रोज इस जानलेवा गर्मी में काम करता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
ये अविनाश कुमार के हथौड़े की आवाज है। नाली के पाइप के जाने का रास्ता बनाने का काम मिला था। गया के बगल में स्थित कुजाफी गांव के रहने वाले अविनाश के लिए यह बेहद जोखिम भरा इसलिए था क्योंकि डीएम के आदेशानुसार गर्मी और लू के कारण गया में पिछले 5 दिनों से धारा 144 लागू है। दिन में 11 बजे से 4 बजे तक मजदूरी और निर्माण से जुड़े हर तरह के काम प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी अविनाश दिन भर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। जवाब में खुद कहते हैं,
मेरे पास पैसे खाने के लिए तो दिक्कत है। हम लोग भी शौक करता है कि थोड़ा मना, जैसे बड़ा अमीर घर का कैसा होता है कि शौक करता है घूमने के लिए, ये बाइक हो गया, अथी हो गया, मेरा साइकिल भी है। जहाँ भी जाते हैं परिवार ही तो साइकिल से जाते हैं। बाहर गए थे हाल ही कुछ दिन पहले तो मेरा पैसा चोरी हो गया रांची स्टेशन पे। बहुत चोर रहता है रांची स्टेशन।
गर्मी के मौसम में भी आप इतना नुकसान देते
हैं? नहीं करेंगे तो जानते हैं, घर को देखना पड़ता है ना, मम्मी पापा हो गया, हम हो गया, करना पड़ता है।
रात में जो खाना बच जाता है वही सुबह में खाकर और उसी को लंच के लिए भी लेकर अविनाश हर रोज सुबह 8 बजे तक दिल्हा के लेबर चौक पर काम के तलाश में पहुँच जाते हैं। इधर गर्मियों में दिहाड़ी कम मिलती है। खेती का काम बंद रहने के कारण सारे मजदूर शहर में ही काम ढूंढने आते हैं। ऐसे में हर रोज काम मिलने की संभावना कम हो जाती है। अविनाश को पिछले दिन तो काम मिल गया था, पर उसके पहले लगातार 2 दिन खाली हाथ घर लौटे थे।
हम लोग सोते हैं करीब 10 से 11 बजे सोते हैं, 5 बजे डेली उठते हैं हम। अभी फिर घर नाश्ता चाह पानी मिला तो मिला, नहीं तो फिर अपना खाना वाना खा के 8 बजे अपना निकल देते। 8 बजे आते हैं यहाँ, 8:30 में 9 या 9:30 में काम लग जाता, नहीं तो नहीं भी लगता। तो अभी गर्मी है ना, गर्मी में काम बहुत कम मिलता है।
एक साथी मजदूर को पिछले दिनों काम करने के दौरान लू लग गई थी। अविनाश को पता है कि लू लगने पर क्या होता है। कहते हैं लू से डर भी लगता है, मगर क्या करें।
लोह के कारण तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जानते हैं मेरा जख्म हो गया इतना बड़ा 4-5 जख्म है। अहम है ना कि अपना पूरा दिन गुजारते हैं इस समय, आदत पड़ गया, कितनों भी गर्म रहे, धूप रहे, कुछ भी रहे, कुछ नहीं।
लू से होने वाली मौतों में प्रायः वही लोग शामिल हैं जिनके पास काम के लिए घर से बाहर निकलने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अविनाश और उनके जैसे सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर उन्हीं लोगों में से हैं। नीरज प्रियदर्शी, BBC गया।
और अब रुख भारत के दक्षिणी शहर का और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का, जो भारी पानी की किल्लत से गुजर रहा है। ये शहर अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये वक्त लोगों को एक कमी के साथ जीना भी सिखा रहा है। शहरवासी जो भी पानी मिले उसकी एक एक बूंद का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने यहाँ मछुआरों की बस्ती में जाकर ये जानने की कोशिश की कि 40 डिग्री की गर्मी में पानी की भारी कमी से लोग कैसे जूझ रहे हैं। सुनिए उनकी रिपोर्ट।
चेन्नई शहर में आज आपको ऐसी कोई सड़क या गली नहीं दिखेगी जहां पानी भरने के रंग बिरंगे प्लास्टिक के ड्रम ना हो। छोटी सी छोटी गली में भी आपको एक बड़ी सी पानी की टंकी जरूर दिखेगी जिसके पास प्लास्टिक के ड्रम रखे होंगे। चेन्नई पानी के किल्लत से जूझ रहा है और यहां के निवासी कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। चेन्नई के उत्तरी इलाके के तोंडियार पेट के मछुआरों की बस्ती में करीब 500 लोग रहते हैं और यहाँ पानी के टैंकर आजकल हर रोज आते हैं, लेकिन इन टैंकरों का कोई समय नहीं होता। गृहिणी सरिता बताती हैं,
टैंक वो टैंक
पहले एक पानी का टैंकर यहाँ आता था और उस तरफ एक और टैंकर आता था, आजकल सिर्फ एक ही टैंकर आता है। यहाँ पाइप के फटे होने की वजह से पानी में मिट्टी आती है और उस तरफ एक नया बोरवेल खोदा गया है जहाँ का पानी नमकीन है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अभी जो पानी यहाँ आ रहा है वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये थे सरिता के शब्द। सरिता कहती हैं कि कुछ लोगों को प्रदूषित पानी के कारण बुखार भी आता है, डॉक्टरों और दवाई पर पैसा खर्च होता है। इस कॉलोनी में एक नया सम्प यानी जमीन में एक टंकी बनाई गई है जिसमें सरकारी टैंकर से पानी भरा जाता है। हर कोई इसी सम्प से पानी लेते हैं। विजयश्री कहती हैं, हर परिवार को 4 ड्रम पानी लेने की इजाजत है। अगर टैंकर में ज्यादा पानी आया है तो 5वें ड्रम में भी पानी भर सकते हैं। ये थे विजयश्री के शब्द। तो पानी लेते समय क्या लोगों में झगड़े नहीं होते हैं? सरिता हंसते हुए कहती हैं, जब हर किसी को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है तो जाहिर है कि झगड़े तो होते ही हैं। बीते साल अक्टूबर दिसंबर में आने वाले उत्तर पूर्व मानसून असफल रहा था। इसी के कारण चेन्नई को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उसे तपती गर्मी के मौसम का सामना भी करना पड़ रहा है। चेन्नई के सामने पीने के पानी की किल्लत कुछ इतनी गंभीर है कि पड़ोसी राज्य केरला के 20 लाख लीटर पानी के प्रस्ताव को तमिलनाडु सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इमरान कुरैशी, BBC चेन्नई।
और अब वक्त है ये जानने का कि दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। अखबारों के साथ भूमिका राय स्टूडियो में हमारे साथ हैं। भूमिका, बताएं पहले पन्ने पर आज क्या कुछ अहम दिख रहा है?
मानसी, बताने की जरूरत हम पहले पन्ने पर खेल
क्रिकेट,
की खबर बिल्कुल 11 रन से जीत है, शमी का हैट्रिक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान टीम, जैसा आपने कहा भी कि अफगानिस्तान हारी जरूर है लेकिन उसने दिल जीता है, सबसे कमजोर टीम है और पायदान में सबसे नीचे है। भारत इस मैच को जीत करके तीसरे पायदान पर पहुंच गया है अंक तालिका पे।
और विश्व कप में जब जितना अफगानिस्तान ने अब तक खेले हैं, जितने मैच, करीब 6 मैच, उन सभी में अफगानिस्तान हारी है।
और एक खास बात और ये कि अभी तक के जितने विश्व कप के मैच रहे हैं उसमें भारत की ये सबसे छोटी जीत है, मतलब सबसे कम अंतर की जीत है, 11 रनों की जीत है। इससे पहले न्यूजीलैंड के साथ था जो मैच, उसमें पुराने विश्व कप में उसमें एक जीत थी, लेकिन ये सबसे छोटी जीत है और सबसे अंक तालिका में जो पिछड़ी हुई टीम है उसके साथ। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो बिहार से जो बच्चों की मौत का सिलसिला है वो अब भी जारी है और अब उन गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें उनका कहना है कि वो जो गाँव वाले लोग हैं मुजफ्फरपुर के आसपास जो भी गांव हैं वो अपने बच्चों को अपने रिलेटिव्स के पास भेज दे रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि गांव में रहने से शायद बीमारी हो रही है, एक तरीके की ये इस तरह की धारणा है, तो लोग गांव छोड़ कर के जा रहे हैं मौतों के चलते। इसके अलावा दिल्ली के महरौली से एक बड़ी दर्दनाक खबर है मानसी, एक शिक्षक ने डिप्रेशन में आके अपने पूरे के पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, गला रेत करके पत्नी समेत अपनी 3 बच्चों का, जिसमें एक 1.5 महीने का बच्चा भी शामिल है, उसको मार डाला। और ये डिप्रेशन, उसने 2 सुसाइड नोट भी लिख रखे थे जिसको बरामद कर लिया गया और उस इंसान को अभी गिरफ्तार भी कर लिया है पुलिस ने। इसके अलावा दिल्ली में अब महिलाओं को फ्री में मेट्रो सफ़र की सौगात देने की का प्रस्ताव दे चुकी है आप सरकार, लेकिन अब वो छात्रों के लिए भी एक नया प्रस्ताव लेके आ रही है। 12th के बाद जो गरीब छात्र हैं उन्हें उनकी शिक्षा को 100% मुफ्त करने की बात कह रही है आप सरकार, तो महिलाओं के साथ साथ छात्रों पर भी मेहरबान है। और एक लोकहित की खबर बोलूं अगर कि सफ़ेद दाग जिसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं उससे जुड़ी एक नई दवा आई है। अभी तक जो इसके लिए दवा थी उससे 70% जो था वो इलाज संभव होता था, लेकिन अब ये 90% इस जो नई दवा है इससे 90% जो है आपको फ़ायदा हो सकता है। और टेलीग्राफ की एक खबर है जिसके मुताबिक बिहार के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के पीछे जो एक इलाका है जहाँ पर झाड़ियाँ हैं वहाँ कुछ नर कंकाल मिले हैं, इसकी जाँच चल रही है। ये श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज वही है जहाँ इन्फेलाइटिस से जूझ रहे बच्चों का जो है वो इलाज चल रहा है। तो ये आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खियां रही।
और अखबारों की विस्तृत समीक्षा सुनाने के लिए धन्यवाद भूमिका। और अब जानते हैं कि बीते सप्ताह पाकिस्तान के उर्दू प्रेस में क्या कुछ चर्चा रही। BBC संवाददाता इकबाल अहमद की बनाई रिपोर्ट सुनिए BBC संवाददाता दिनेश उप्रेती की आवाज में।
इस हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में पाकिस्तान की सेना में अधिकारियों के तबादले, पाकिस्तान की एमनेस्टी स्कीम, जरदारी की गिरफ्तारी वगैरह से जुड़ी खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहीं। इस हफ्ता पाकिस्तान की सेना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अखबार जंग के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख आसिम मुनीर को गुजरांवाला का कोर कमांडर बना दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट फैज हमीद को ISI का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की रोजाना खराब होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज के बोझ से निजात पाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आम जनता से मदद की अपील की है। अखबार नवाए वक्त के अनुसार इमरान खान ने टैक्स की चोरी रोकने के लिए जनता से अपील की है कि वो एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाएं और अपनी संपत्ति की जानकारी दें। राष्ट्र के नाम संदेश में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान पर इस समय 30,000 अरब का कर्ज है। उन्होंने कहा कि 30 जून तक अपनी बेनामी जायदाद और विदेशों में जमा पूंजी को सार्वजनिक कर इस स्कीम का फायदा उठाएं। 30 जून के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीति बनाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए अक्टूबर तक का आखिरी मौका दिया है। 38 सदस्य देशों वाली इस संस्था का आरोप है कि पाकिस्तान चरमपंथियों को फंडिंग देता है और मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता है। इस कारण FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और उसे ब्लैक लिस्ट में डालने वाला था, लेकिन 3 सदस्य देशों की मदद के कारण पाकिस्तान को अक्टूबर तक का एक आखिरी मौका दिया गया है। अखबार दुनिया ने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए सुर्खी लगाई है, पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की भारतीय साजिश नाकाम, अक्टूबर तक मिली मोहलत। अखबार के अनुसार अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई बैठक में भारत ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने का प्रस्ताव लाया था, लेकिन चीन, तुर्की और मलेशिया की मदद से भारत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भ्रष्टाचार मामलों की जांच करने वाली संस्था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी NAB ने जरदारी को गिरफ्तार किया और फिर अदालत ने उन्हें पुलिस रिमांड पर दे दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है और उनका जुर्म यह है कि उन्होंने आम जनता के अधिकारों की वकालत की है। अखबार जंग के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 66वीं सालगिरह के अवसर पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि एक प्रधानमंत्री इमरान खान का पाकिस्तान है और दूसरा अवाम का पाकिस्तान है।
और अब साप्ताहिक कार्यक्रम न्यूज़मेकर में मुलाकात फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीतने वाली बिहार की सुमन राव से। उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी इंदु पांडे।
एक चेहरा छा जाता है और बन जाता है न्यूज़मेकर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है BBC न्यूज़मेकर्स में। मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे। 2019 की मिस इंडिया, क्या आपने सच में सोचा था कि ये क्राउन आप ही को मिलने वाला है?
हाँ, सोचा तो था, क्योंकि जब वो सोचा तभी उतना अपना 100% दे पाई। ये चीज दिमाग में रखी ही सोती थी कि एक बार अपने आपको क्राउन में इमेजिन करती थी कि कैसा लगेगा अगर जीत गई तो, और फिर उसी खुशी के साथ उसी स्माइल के साथ में सोती थी। तो इमेजिन तो किया था और अब बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि वो ड्रीम रियलिटी में टर्न हो गया।
प्रिपरेशन तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई?
पेरेंट्स की वजह से जो भी हुआ है, क्योंकि जब मेरे दिमाग में भी ये ख्याल आता तब मुझे सबसे पहले पापा को जाके पूछना पड़ा था कि ऐसा मैं कुछ सोच रही हूँ, कुछ करूँ या नहीं। तो उन्होंने एक बार वो हिचकिचा रहे थे, बट फिर भी उन्होंने कहा कि कल को ये नहीं होना चाहिए कि तेरे मन में रह जाए कि काश कर लिया होता। उनके लिए मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा मुझे परमिशन दी उस चीज़ की। अपने ऊपर काफ़ी काम करना था, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप खुद को जानते हो, आपको लगता है पर आप जानते नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही था कि मैंने अपने आप को जाना कि मैं हूँ क्या, और बस वही मेरा मेन फोकस था।
अक्सर मिस इंडिया की राह होती है बॉलीवुड की तरफ, तो आप क्या कहना चाहेंगी बॉलीवुड के लिए?
फिलहाल सिर्फ 20 साल की हूँ, तो पढ़ाई और अब जो मेरा प्रोजेक्ट है उस पर ध्यान दूंगी। बाकी मुझे संजय लीला भंसाली जी की फिल्म्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर मौका मिला तो उनकी फिल्म में भी काम करना पसंद करूंगी। जब मिलेगी तब बात करेंगे, तब आप इंटरव्यू लेने आओगे मुझे पता है, तो तब मैं आपको बताऊंगी।
कौन सा सवाल था जिसके जवाब ने उन्हें क्राउन दिला दिया?
फिनाले वाले दिन तो जैसे हम टॉप 16 में सिलेक्ट हुए थे तो सबसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे थे, और फिर जब टॉप 6 में सिलेक्ट हुए तो एक कॉमन क्वेश्चन सबके लिए था। तो वो कॉमन क्वेश्चन था, व्हाट डज फेमिनिज्म मीन टू यू? मेरा यही आंसर था कि फेमिनिज्म इज हैविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जो मेल है फीमेल है सबको सेम राइट और अपॉर्चुनिटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि मेल को हम नीचे गिरा रहे या फीमेल को हम ऊपर उठा रहे ज्यादा। खुद की बॉडी के डिसीजन हम खुद ले सके, सोसाइटी में दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इट डजेंट मीन मैन हेटिंग। तो मेरा बस वही फोकस था कि मैं अपने आंसर में वो बोलूं, और मैंने यही बताया।
और इसी के साथ सुमन राव बन गई मिस इंडिया 2019।
یہ تھی فیمینا مس انڈیا 2019 سمن راؤ، جن سے بات کی اندو پانڈے نے۔
نمسکار بھارت، شارٹ ویو 49, 41 اور 25 میٹر بینڈ، یعنی 6070, 7290 اور 11995 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر۔
اور اب وقت ہے کھیل کی خبروں کا، اور سب سے پہلے بات وشو کپ کرکٹ کی۔ اب تک ایک بھی میچ نہ ہارنے والی بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں بڑی مشکل سے اپنی جان بچانے میں کل کامیاب رہیں۔ افغانستان اور ویسٹ انڈیز نے انہیں ہرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کیسا تھا رومانچ کا عالم، سنیے آدیش کمار گپت کی رپورٹ میں۔
پہلی بال پہ جب باؤنڈری آیا تھا تو تھوڑا دماغ میں تھا کہ اگر بیٹا ایک بال اور غلط ہوا تو وہ تیرے ماتھے پہ چڑھنے والا، تو فوکس اور زیادہ تھا، کوشش کر رہا تھا کہ بس رڈار میں ہی گرے وہاں پہ۔
یہ شبد ہیں بھارت کے تیز گیند باز محمد شمی کے، جو کل اس وشو کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا ہی میچ کھیل رہے تھے اور افغانستان کے خلاف اپنا اور پاری کا انتیم اوور بھی کر رہے تھے۔ تب افغانستان کا اسکور 7 وکٹ کھو کر 209 رن تھا اور اسے جیت کے لیے 16 رن کی درکار تھی۔ محمد شمی کی پہلی ہی گیند کو پچ پر جبے محمد نبی نے 4 رنوں کے لیے باؤنڈری لائن کے باہر بھیجا اور اپنا ویکتیگت اسکور 52 کیا۔ اب 5 گیندوں پر 12 رنوں کی ضرورت تھی اور میدان میں کھڑے بھارت کے کپتان وراٹ کوہلی اور سبھی کھلاڑی سوچ میں پڑ گئے کہ اب میچ گیا ہاتھ سے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ اتہاس ہے۔ شمی کی دوسری گیند پر کوئی رن نہیں بنا، لیکن اگلی 3 گیندوں پر تو انہوں نے کمال کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے محمد نبی کو ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ کرایا، اس کے بعد آفتاب اسلم اور مجیب الرحمان کو بولڈ کر ہیٹرک پوری کرتے ہوئے بھارت کو 11 رن سے جیت دلا دی۔ افغانستان کے سامنے جیت کے لیے 225 رنوں کا لکشیہ تھا، لیکن وہ ایک گیند شیش رہتے 213 رنوں پر سمٹ گئی۔ محمد شمی نے 40 رن دے کر 4 وکٹ حاصل کیے، جبکہ جسپریت بمراہ، یوزویندر چہل اور ہاردک پانڈیا کو 2-2 وکٹ ملے۔ افغانستان کے محمد نبی نے 52، رحمت شاہ نے 36 اور حشمت اللہ شاہدی اور نجیب اللہ زاردان نے 21-21 رن بنائے۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے کپتان وراٹ کوہلی کے 67، کیدار جادھو کے 52 اور کے ایل راہل کے 30 رنوں کی مدد سے نردھارت 50 اوور میں 8 وکٹ کھو کر 224 رن بنائے۔ ہار کے بعد بھاری بن سے افغانستان کے کپتان گلبدین نے کہا، نجیب اللہ، رشید خان غلط شاٹ کھیل کر آؤٹ ہوئے، نبی شاندار کھیلے اور بھارتی گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی۔
نجیب اینڈ رشید ہیو کوائٹ میک مسٹیکس بٹ کریڈٹس گو ٹو دی انڈین بولرز، دے بولڈ ریلی ویل، سو نبی آلسو پلیڈ ویل۔ ٹوڈے آئی مس دی اپورچونٹی ٹو بیٹ دیم، سو بٹ انڈیا از ون آف دی بیسٹ ٹیم ناؤ۔
اب جو جیتا وہی سکندر، لیکن ہار کر بھی دل جیتا افغانستان نے، کرکٹ سمیکشک وجے لوکپلی کہتے ہیں۔
ٹویٹر پہ میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو جیت لینا چاہیے تھا۔ میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں، کیونکہ اتنی کمزور ٹیم، اتنی نئی ٹیم اور بھارت جیسی ٹیم کو انہوں نے آلموسٹ ہرا دیا۔ مطلب اس میں تو میں کہوں گا کہ ہار میں بھی افغانستان کی جیت ہے۔ یہ جو میچ رہے گا ان کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ آج کا کھیل دیکھنے کے بعد میں تو فین ہو گیا ہوں افغانستان کرکٹ کا۔
خیر، جان بچی لاکھوں پائے۔ اب بھارت 5 میں سے 4 میچ جیت کر انک تالیکا میں 3rd پائیدان پر ہے۔ اب بھارت کا اگلا مقابلہ 27 تاریخ کو ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔ ادھر کل نیوزی لینڈ بھی ویسٹ انڈیز سے ہارتے ہارتے بچا اور کیول 5 رن سے جیتا۔ ویسٹ انڈیز کے سامنے جیت کے لیے 292 رنوں کا لکشیہ تھا، لیکن وہ کارلوس برتھویٹ کے 101 اور کرس گیل کے 87 رنوں کے باوجود 49 اوور میں 286 رن پر سمٹ گئی۔ اس سے پہلے ٹاس کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ نے کپتان کین ولیمسن کے 148 رن کی مدد سے نردھارت 50 اوور میں 8 وکٹ کھو کر 291 رن بنائے۔
رپورٹ سنا رہے تھے آدیش کمار گپت۔ اور اب کارکرم میں آپ سے ودا لیں، اس سے پہلے مکھی سماچار ایک بار پھر بھومیکا رائے سے۔
بی بی سی سماچار۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ بڑھتے تناؤ کو دیکھتے ہوئے امریکہ ایران پر اترکت پرتبندھ لگانے کی یوجنا بنا رہا ہے۔ ٹرمپ پرشاسن نے مدھیہ پور میں شانتی استھاپت کرنے کے ادیش سے $50 ارب کی اپنی ایک یوجنا جاری کر دی ہے۔ شنیوار کو وشو کپ کرکٹ میں ساؤتھ ہیمپٹن میں بھارت اور افغانستان کا مقابلہ ہوا۔ بھارت نے یہ میچ 11 رنوں سے جیت لیا۔ اتر کوریائی نیتا کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ایک ویکتیگت چٹھی لکھی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।